शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अगर आपको याद हो जब हमने इस पूरी श्रृंखला की शुरुआत की थी तब हमने बात की थी मूल्यों की, क्योंकि समाज में जिस बात का सबसे ज्यादा दुख हमें लग रहा था, जो डिप्लीशन हमें नजर आ रही थी, वो यही कि कहीं ना कहीं हम मूल्यों को सही परिपेक्ष में देखना भूल गए हैं। हम जानते ही नहीं कि वैल्यूज क्या है। और अगर आपको याद हो हमने बात की थी लिविंग वैल्यूज, यानी कि उन मूल्यों को कैसे अपने जीवन में ढालना है, और उसके लिए हमने शुरुआत जब इस प्रोग्राम की थी वो की थी शीलू बहन के साथ, एक बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी जो कि एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड में फैकल्टी भी है, माउंट आबू में रहती हैं। तो आज हमारा एक बार फिर बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ हैं शीलू बहन और उनसे आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और बहुत से आप ही के सवालों को आज हम उनसे उनके सामने लेकर आएंगे। शीलू बहन आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
जहां तक बात अगर हम लिविंग वैल्यूज की करें, जहां हमने ये शुरू किया था, बहुत अगर हम देखते हैं तो एक संबंध लोगों का जुड़ा तभी से था। तो मूल्यों का अगर आज लगभग डेढ़ साल से ज्यादा हो गया जीलो बहन वो बात किए हुए, आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं उन मूल्यों को जहां हम भूल चुके थे, जहां हम अपनी ही पहचान खो चुके थे, अब थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी अवेकनिंग होनी शुरू हुई?
जी, मैं समझती हूँ कि अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि मनुष्य समझ रहे हैं कि जीवन में अगर वैल्यूज नहीं है तो जीवन का भी वैल्यू नहीं है। इसलिए शायद ये नाम भी पड़ा है वैल्यूज, क्योंकि जीवन का मूल्य ही तब है जब जीवन में मूल्य हो। तो ये मनुष्य समझने लगे हैं।
बिल्कुल, बहुत सुंदर बात से आज शुरू हुई है कि जीवन का क्या जो मूल्य तभी है अगर जीवन में हमारे मूल्य होंगे। और हम आज हर बार टटोल रहे हैं, अपने आप को देखते हैं, अवेयर हो रहे हैं, सापेक्ष देख पा रहे हैं, तो जहां देखना शुरू कर देते हैं वहां हम सही रास्ते पर चलने भी लगते हैं। शीलू बहन, बहुत से सवाल हैं क्योंकि इन दिनों बहुत सी बातें हुई हैं अपनी सही पहचान को लेकर, आत्मा की सही पहचान, कि मैं एक आत्मा हूं, मेरी आत्मा नहीं, मैं एक आत्मा हूं, ये डिफरेंस समझ गए हैं लोग। अपने सभी दर्शकों के साथ भी एक बार फिर शेयर करते हैं कि मैं आत्मा यानी कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, वो एनर्जी जो कि कई तरह से काम करती आ रही हूं, मैं सोचती हूं, मैं बुद्धि से परखती हूं, बुद्धि से डिसीजन लेती हूं, और फिर जो मैं काम करती हूं वो संस्कार के रूप में या वो एक याद के रूप में मेरे साथ रहता है, और ये आत्मा यानी मेरा कार्य हो जाता है। शीलू बहन, इससे जुड़े बहुत से लोगों के सवाल आए हुए हैं, हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये पहला सवाल मैं ले रही हूं अजय कुमार अग्रवाल जी का है, सूरत गुजरात से। ये कहते हैं कि अगर मन आत्मा का एक हिस्सा है तो, और वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है, जैसे आत्मा शिफ्ट होती है, तो एक बच्चे का जो मन होता है वो बच्चे की तरह फिर क्यों सोचता है? उसे चॉकलेट चाहिए, उसे खिलौने चाहिए, और जो मन यूथ का जो मन है, क्योंकि थॉट वही क्रिएट कर रहा है, वो एक यूथ की तरह एक करियर, मनी, कंफर्ट सब मांगता है, और एक बूढ़ा जब हो जाता है तो बूढ़े की तरह मन क्यों हो जाता है? वो भजन कीर्तन सत्संग की तरफ चलने लग जाता है। तो जब मन आत्मा का ही एक स्वरूप है, आत्मा का ही एक हिस्सा है, तो वो कंटिन्यूअस एक ही तरह से क्यों नहीं रहता? क्योंकि आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी में नहीं हो सकता है, ये इनका मानना है। तो क्या कहेंगे?
वैसे तो देखा जाए कि संस्कारों का भी तो असर मन पर पड़ता है। आप देखेंगे कई प्रकार के छोटे बच्चे कितने शांत होते हैं, ज्यादा सोचते भी नहीं है, और बहुत चंचल नहीं है, एक्टिव भी है पर चंचल भी नहीं है, परेशान नहीं करते माँ को, और कई तो बहुत परेशान करते माँ को, बहुत तंग करते, गुस्से वाले होते, रोते ही रहते, और कोई देखो बिल्कुल नहीं रोते। तो ये संस्कार मन के द्वारा ही तो व्यक्त होते हैं।
और अगर हम देखें तो मन को, हमने ये देखा था कि मन थॉट क्रिएट कैसे करता है, संस्कारों से जो उसको मिला होता है, या जो बाहर की जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो बाहर है, और या हमारा तीसरा बिलीफ सिस्टम
जी,
जो होता
है। मन पर तो कई बातों का प्रभाव पड़ता है, तन का भी प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अन्न का प्रभाव पड़ता है, संघ का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मन पर, क्योंकि कई बातों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए मन का सोचने का तरीका ही बदलता जाता है।
अच्छा, दूसरी बात ये जानना चाहती हूँ कि जो संस्कार हैं जो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं? बिकॉज यहाँ अगर हम ये मान लें कि वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं, तो फिर वो सटल रूप में ही आएंगे।
वास्तव में सबकॉन्शियस माइंड हम किसको कहते हैं? वो उसको संस्कार कहते हैं। तो वही तो सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इनका कनेक्शन तो आप उसमें है ही है ना।
बिल्कुल, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि संस्कार जो है वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड है, और इसीलिए वो याद भी नहीं रखता पिछले जन्म की। सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रहता है, लेकिन वो उतना ही आएगी बाहर जो आपको भाव आपको चाहिए। चाहे आप कह रहे हैं कि वो शांत रहता है या बहुत उछल कूद मचा रहा होता है बच्चा, तो वो उसके भाव जो है वहां तक आ जाते हैं।
और हम कई बार ये भी सोचते हैं कि थोड़ा एक और कंपैरिजन कर सकते हैं कि मन जो है ना एक ब्रिज की तरह है। आत्मा और शरीर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो शरीर का प्रभाव मन पर, मन का प्रभाव शरीर पर, तन पर। तो इसीलिए ये बहुत इंटरेक्शन है। इसलिए मन किस तरफ जा रहा है वो उस समय समझना मुश्किल हो जाता है। कभी वो तन की बातें सोचेगा, कभी बहुत ऊंची बातें सोचेगा, बुद्धि जो उसे दिशा देती है उस प्रकार से सोचेगा। तो ये मन एक लिंक के रूप में है फिजिकल और स्पिरिचुअल के बीच में।
तो समवेयर वही बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर, मतलब कॉन्शियसनेस शिफ्ट का मतलब ही वही है कि मन को जब वो बॉडी के बारे में बात कर रहा है या सोच रहा है, तो वहां से हमें चेंज करके उसको सोल कॉन्शियसनेस।
इसलिए कई बार हम कहते हैं ना, मेरा एक मन कहता है ये करो, दूसरा मन कहता है नहीं करो, तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अब मन तो एक ही है, मन तो दो नहीं है, लेकिन एक पहलू मन का जो बॉडी से प्रभावित है वो कुछ और सोचेगा, और दूसरा मन जो बुद्धि से प्रभावित है वो कुछ और सोचेगा। इसलिए एक द्वंद चलता है मन के अंदर।
एक सवाल अब इस वक्त शुरू में मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत से लोगों का सवाल है कि यू ऑलवेज स्पीक ऑफ सोल एज बीइंग प्योर, परफेक्ट एंड कंप्लीट। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों के साथ ये जानना चाहूंगी कि ये तो ठीक है, हम हमेशा हर बार ये कहते हैं कि हम एक प्योर, परफेक्ट और कंप्लीट बीइंग हैं। ये इस पे आते हैं हम कि ये सही है या नहीं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू हैव दैट एक्सपीरियंस, यू नो, आपसे हम यही शेयर करना चाहूंगी। द मोमेंट वी से दिस शीलोबेन, वी फील दैट वे। जब भी हम अपने आप में ये सोचते हैं कि मैं एक पीसफुल सोल हूं, मैं एक प्योर सोल हूं, इट मेक्स मी फील गुड। आई थिंक दैट इज वन रीजन वाई वी शुड एक्चुअली कंटिन्यू टू फील दैट वे। लेकिन इनका ये सवाल है कि इफ दैट इज ट्रू, देन वाई आर सम सोल सो इविल, एंग्री? कई जो आत्माएं हमारे सामने जो हैं वो इतनी खराब क्यों हो जाती हैं? और दे रिजॉर्ट टू ट्रबलिंग दोज ऑन द अर्थ प्लेन एंड सील टू पोजेशन।
वास्तव में क्या है, कोई भी आत्मा बुरी नहीं है, लेकिन उस समय जब वो गुस्से में है या ईर्ष्यावश है या नफरत, वैर, दुश्मनी आदि कर रही है, हम कई बार कहते हैं वो परवश है। जैसे कोई परवश आत्मा होती है ना, उसको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वो दूसरे के वश में है, अंडर इन्फ्लुएंस। तो इसी प्रकार हम कहते हैं जब ये देह अभिमान आता है, उस देह अभिमान के कारण ही ये सारे विकार आते हैं, ये विकृतियां इसीलिए है। और ये विकृतियां मानो जैसे सोने में खाद के बराबर है। सोना अपने असली स्वरूप में तो सत्य है, 24 कैरेट गोल्ड है, वेरी वेरी प्योर, लेकिन फिर सोने में खाद भी तो पड़ती है। अब उस खाद जो पड़ी, उस खाद को हम निकाल भी सकते हैं, तो ये तो नहीं कहेंगे सोना बुरा है या सोना खराब है, लेकिन सोने में खाद पड़ी और वो खाद निकल गई, सोना तो है ही सच्चा सोना। तो आत्मा अपने मूल स्वभाव में तो सच्चा सोना है, लेकिन कई जन्मों का जो प्रभाव है, देह का साथ है, प्रकृति का साथ है, इस साथ के कारण आत्मा अपने आप को भूल जाती है। क्योंकि स्मृति और विस्मृति का खेल भी है,
मेमोरी लॉस में है हम एक्चुअली।
तो वो स्मृति जब चली जाती है कि मैं एक आत्मा हूँ और देह समझने लगते हैं, तब आत्मा पर इन विकारों का प्रभाव पड़ता है। और जब आत्मा को फिर से स्मृति आई कि मैं कौन हूँ, फिर से वो शक्ति का अनुभव होने लगता है।
यहाँ एक करेक्शन, एक्चुअली बहुत से लोग जो हैं वो इस बारे में जानना चाहते हैं कि क्या जो मैं जो आत्मा हूँ, मैं अभी भी वो कंप्लीशन की जो बात होती है, कंप्लीट, परफेक्ट, प्योर, हैप्पी और यू नो पीसफुल, ये मैं हूँ या मुझ में कमियां आ चुकी हैं और उसको मुझे फिर बाहर से कहीं से चीजें लेकर उन कमियों को खत्म करके बाहर से मुझे, जैसे हम परमात्मा से कहते हैं कि परमात्मा के साथ योग लगा के उन्हें लेना है उन शक्तियों को, या वो शक्तियों से भरपूर मैं आज भी हूं?
नहीं, शक्तियों से तो भरपूर हूँ ही, लेकिन वो शक्तियां मैं भूल गई हूँ। तो इसीलिए बाहर से कनेक्शन चाहिए, जैसे एक बैटरी है, वो रिचार्जेबल बैटरी है, उसके अंदर चार्ज है, परंतु डिस्चार्ज हो गई। अब उसे फिर से चार्ज करने के लिए चार्जर में डालना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा, पावर हाउस से कनेक्शन करना होगा।
तो वो पोटेंट रूप में है,
पोटेंट रूप में है,
तो वो जब तक एनर्जी का संचार नहीं होगा तब तक वो सामने नहीं आएगी,
तब तक सामने नहीं आएगी। इट हैज टू, इट इज देयर, जैसे लाइट में, बल्ब में फिलामेंट है और फिलामेंट में वो शक्ति भी है जलने की, पर कनेक्शन तो चाहिए ना। इसलिए आत्मा की अपनी शक्ति है, लेकिन आत्मा अपनी शक्ति को भूल जाती है, तो वो फिर से रिवाइव करने के लिए उस परम शक्तिवान परमात्मा से योग चाहिए। एक्सटर्नल सोर्स जरूर चाहिए ना, वो एक्सटर्नल सोर्स परमात्मा है।
वंडरफुल, दिस इज व्हाट वी नीड टू एक्चुअली रियलाइज, कि है वो शक्ति, वो हम में है, सारे हमारे में जो है वो एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम अचीव कर सकते हैं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, क्योंकि हम, अगर आप ये कहें कि हमारे पास स्मृति नहीं रहेगी, लेकिन हमारे साथ बहुत बार हुआ है इस पूरे प्रोग्राम की श्रृंखला के दौरान कि समझ में तो आ गई बात, समझ में आ गई तो मतलब स्मृति भी आ गई। जब भी हम सोचते हैं हम बड़ा अच्छा अनुभव करते हैं।
नहीं, लेकिन अनुभव ये भी भले है पर फिर भी हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये मेरे अंदर है, अभी अभी स्मृति, अभी अभी भूल गए, क्योंकि दे अभिमान का प्रभाव ज्यादा है। इतना इन्फ्लुएंस है बॉडी कॉन्शियसनेस का कि वो सोल कॉन्शियसनेस का इन्फ्लुएंस कम रहता है, बॉडी कॉन्शियसनेस का ज्यादा रहता है। इसलिए बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो जब हम अपने आप को रिमाइंड कराते हैं फिर वो स्मृति जागृत, फिर भूल जाते हैं।
इनफैक्ट अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग जो ये हैं, जिनके भी ये सवाल आए हैं, वो दूसरों के लिए ज्यादा कह रहे होते हैं। यू नो, हम अपने लिए कभी नहीं सोचते। द मोमेंट हमें ये फील होता है कि हाँ, जब हम इस स्मृति में आते हैं कि मैं प्योर हूँ, मुझ में है वो सारी की सारी शक्तियां, तो इट मेक्स मी फील गुड। लेकिन मैं जैसे ही दूसरे व्यक्ति को देखता हूँ कि मुझे वो बुरा लग रहा है, उसमें ईर्ष्या दिख रही है, उसमें लोभ दिख रहा है, तब मैं मानता हूँ कि वो व्यक्ति तो नहीं हो सकता, फिर वो कैसे प्योर हो सकता है, तो तभी ये सवाल उठता है।
हाँ, इसलिए अपने कॉन्शियसनेस को वही चेंज करना है कि वो भी अच्छा है। इसलिए आप देखेंगे कई, ये हम कई बार जेलों में राखी बांधने जाते हैं तो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, हेट नॉट द सिनर बट हेट हिज सिंस। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। एवरी सिनर not necessary has been a sinner throughout. Every sinner can become a saint. That's what is a very beautiful saying. Every sinner has a future. And every saint a past. Who knows ki jo abhi saint hai, kya pata kya kya karma kiya.
Agar hum apne itihasik unko uthakar dekhte hain to sab wahi se nikal ke aaye hue hain.
To wo sinner se saint kaise bana? Usne apne jeevan mein parivartan kiya. Aur wo सेंट सिनर भी हो सकता है, दोबारा भी जा सकता है, क्योंकि अपने आप को भूल जाएगा। तो ये संसार एक परिवर्तनशील क्रिया है। इस दुनिया के अंदर आज एक है, कल दूसरे बन सकते हैं, लेकिन हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को न भूलें कि मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में क्या हूँ। उस रूप में तो मैं शुद्ध पवित्र प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप आत्मा हूँ।
बिल्कुल। और जहां वो अनुभव की बात आती है, अभी आप हमारे से जब पहले हम बात कर रहे थे श्री बहन, आपने कहा कि कई तरह से लोग एक दूसरे को देखते हैं, तो उसके बारे में, ताकि हम ज्यादा क्लियर कर पाएंगे अपने आप।
हाँ, मैं कई बार बताती हूँ कि देखिए, चार प्रकार की वृत्तियां हैं, मेंटालिटीज है। एक वृत्ति वह है जिससे मनुष्य समझता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, पर दूसरा बुरा है। दूसरी वृत्ति यह है कि मैं बुरा हूँ और दूसरा
बहुत अच्छा है,
दूसरा बहुत अच्छा है, मैं बुरा हूँ और वो अच्छा है। तो पहली है कि मैं अच्छा हूँ वो बुरा है, दूसरी है मैं बुरा हूँ वो अच्छा है, और तीसरी तो बहुत ही बुरी वृत्ति, वो है कि मैं भी बुरा वो भी बुरा,
पूरा
संसार बुरा है, बुरी है, सब कुछ बुरे है, हर एक व्यक्ति बुरा है, यहाँ तक कि भगवान भी बुरा है। और चौथे वो है जो ये सोचते हैं कि मैं भी अच्छा हूँ और वो भी अच्छा है, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम अच्छे हैं। इसकी बहुत सारी कहानियां शास्त्रों में आती है, जैसे हनुमान का मिसाल है। हनुमान के अंदर बहुत शक्ति थी, लेकिन जब तक उसे कोई याद कराता तब तक उसको उस शक्ति का एहसास नहीं होता था, और जब उसे याद करा कि हे हनुमान, तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तब उसको एहसास हुआ और एकदम से शक्ति भीतर से आ गई। तो परमात्मा भी हमें वो याद कराते हैं कि हे आत्माएं, पहचानो अपने आप को, आप तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हो। और जैसे ही हम अपने आप को ये समझने लगते हैं तो अंतर में इतना संतोष आता है, क्योंकि यही हमारा नेचुरल स्वभाव है, यही हम जीवन में चाहते हैं। तो जबकि चाहते भी यही है और है भी हम वो, तो उन्हें अपनाना में मुश्किलात क्या,
मुश्किल हो जाता है
करना, मुश्किल क्यों।
शिरुबेन, यही मैं कहना चाहती हूँ कि ज्यादातर लोग जब हम ये बोलते हैं, वो मोमेंट जब हम कहते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक यू नो मैं आई एम अ हैप्पी सोल, तो समवेयर इट मेक्स यू फील वेरी गुड। और जब भी हम किसी शांत व्यक्ति के साथ होते हैं, जब भी हम किसी प्योर व्यक्ति के साथ होते हैं, हम तक वो वाइब्रेशन आती है, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन हमें ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम हर पल वो अनुभव कैसे करते
हैं। यही तो हमें करना है, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। ऑल अवर एफर्ट्स आर ऑन दिस कि हर वक्त वो पुरुषार्थ अंदर से चलता रहे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और फिर उस वक्त दूसरे के प्रति भी मेरी भावना कैसी होनी चाहिए, वो भी अंदर का पुरुषार्थ चलना चाहिए। यही तो मनुष्य की एफर्ट्स है, नहीं तो एफर्ट्स हम किसको कहते हैं?
बिल्कुल
किसी को ही कहते हैं।
शिरुबेन, यहाँ जो हमने अभी जो चार एटीट्यूड्स की बात आपने की, वृत्तियों की बात की, कि मैं तो अच्छा हूँ बाकी सब नहीं ठीक है, ये बहुत सारे लोगों की होती है। और मैं बुरा हूं, मैं तो बहुत ही बुरा हूं, मुझ में कुछ नहीं है, मुझ में कहीं बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सब लोग अच्छे हैं, ये भी हैं। तो ये जब आपके मन में ये थॉट है, तो हाउ शुड वन वर्क ऑन दैट, ये पुरुषार्थ क्या हो?
इसमें क्या, ये इसको हम कहेंगे दो प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज। मैं बुरा हूं वो अच्छा, माना अपने प्रति इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके लिए कि भाई वो अच्छा है, या अपने लिए सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके लिए इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। परंतु इसके लिए हम कहते हैं कि रिस्पेक्ट हो, अपने प्रति रिस्पेक्ट और दूसरे के प्रति भी रिस्पेक्ट, जिसको हम कहेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। सो इफ आई नो हाउ टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ इन अ स्पिरिचुअल वे, आई विल रिस्पेक्ट अदर्स ऑल्सो इन अ स्पिरिचुअल वे। सो दिस इज वॉट वी लर्न इन मेडिटेशन, टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड टू रिस्पेक्ट अदर्स। That's what we say, value yourself and value others. You can get respect only if you give respect and if you have self-respect. अगर स्वयं के प्रति भी रिस्पेक्ट है, मेरा ये भी रिस्पेक्ट है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, यही तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। फिर दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है कि वो भी शांत स्वरूप आत्मा है, तो यही रिस्पेक्ट एक दो के प्रति ही वो शांति का अनुभव कराएगी। हमारी दादी जी कई बार कहा करती थी, हारमनी हारमनी, माना हिंदी में कहेंगे हार मानी झगड़ा टूटा। हम झगड़ा क्यों बढ़ाते हैं, हम समझते मैं ही ठीक हूँ, अच्छा भाई तुम ठीक हो, तो हार मानी झगड़ा टूटा। हार मानने में से कोई हमारा नुकसान तो होगा नहीं, चलो मान लिया, अभी वो नहीं समझेगा, बाद में समझ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ना करें। इसमें हमारा बहुत समय, श्वास, संकल्प, शक्ति बहुत वेस्ट होते हैं।
बिल्कुल, ये हम सब एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, और कई बार हम ये कहते हैं कि मैं तो हार मान रहा हूँ, लेकिन बेसिकली अंदर से हमने नहीं मानी होती है।
हाँ, कई बार हम समझते हैं कि चलो मैंने अपना अंदर गुस्सा पी लिया, और क्योंकि मैंने भूल की होगी, कई बार ऐसे भी होता है। पर हार मानी का मतलब ये नहीं कि मैंने भूल अपनी कबूल कर ली, परंतु इसका भाव है कि हम झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, समझदार बन करके हम समय, श्वास, संकल्प, शक्ति को बचाएं, क्यों हम इसके पीछे वेस्ट करें। समय आएगा, टाइम इज अ वेरी बिग हीलर, अपने आप वो बात समझ में आ जाएगी।
एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी शुड शिफ्ट शिफ्ट आर थॉट टू समथिंग एल्स, यू नो, हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरा समय जो है वो कहीं और केंद्रित कर दें। तो वो फिर जैसा आपने कहा, क्योंकि हम उसी थॉट प्रोसेस में घुस जाते हैं,
बिल्कुल
उस थॉट पे एनर्जी देते जाते
हैं, हम रोक ही नहीं पाते, हम अपने मन को डाइवर्ट कर ही नहीं पाते। तो फिर जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमको जैसे बाबा ने सिखाया, तीन बिंदु लगाओ, मैं आत्मा बिंदु, वो आत्मा भी तो बिंदु है ही है, परमात्मा भी बिंदु, और एक संसार, एक ड्रामा है वो भी बिंदु। तो बिंदु समझो खुद को, बिंदु परमात्मा को याद करो और बिंदु लगा दो, तो वो बात वहीं समाप्त हो जाएगी।
हर कॉन्फ्लिक्ट पे वी शुड पुट अ एंड, यू नो, एक बिंदी लगा दी। ऑफ कोर्स एक और सवाल यहाँ लेते हैं, इन्हीं का ये है कि व्हाट गोज आउट ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी डाई, हमारी सोल या हमारा एस्ट्रल बॉडी?
वास्तव में व्हाट गोज आउट ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी डाई, ये प्रश्न ही ठीक नहीं है.
बिकॉज़ आई डोंट डाई, वी नेवर डाई.
या वी नेवर डाई, एंड व्हाट गोज आउट ऑफ आवर बॉडी, मैं ही तो बॉडी से बाहर निकलता हूँ, तो बॉडी तो मेरे से अलग चीज है, और मैं वो आत्मा इस देह से निकल जाती
हूँ.
बाकी हाँ, एस्ट्रल बॉडी कई मानते हैं कि एस्ट्रल बॉडी है, क्योंकि वो भी आत्मा के संस्कारों का ही प्रोजेक्शन है. बाकी एस्ट्रल बॉडी कोई प्रकृति की तो चीज नहीं है, प्रकृति की चीज तो यह शरीर ही है, और आत्मा तो प्राकृतिक है ही नहीं, वो तो स्पिरिचुअल है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी है. तो ये जो एस्ट्रल बॉडी है, ये हमारे संस्कारों का ही प्रोजेक्शन के रूप में है, जो एक आकार के रूप में दिखाई देता है. परंतु जब हम दूसरे शरीर में प्रवेश कर दे जाते हैं, तो वो भी खत्म हो जाता है. वो कोई सदा नहीं रहता है. आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और ये शरीर भी तो विनाश हो जाता है.
यही जहां हम आत्मा की बात कर रहे हैं शिरो बहन, आत्मा के स्वरूप को कई लोग जानना चाहते हैं, आत्मा की सीट, सीट ऑफ द सोल के बारे में बात करना चाहते हैं. और एक सवाल यहाँ पे है रजनी जी का कि आत्मा जो है वो अगर एनर्जी है, एक सेल की तरह अगर एनर्जी है, तो फिर उसकी क्या इंडिविजुअल आइडेंटिटी फॉरएवर रह सकती है?
नहीं, सोल तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी फॉरएवर रहती है. सोल में कोई परिवर्तन नहीं आता फिजिकली. लाइक जैसे हम कहेंगे भाई, सोल को, आत्मा को अगर हम आग में डालें तो जलेगी नहीं,
ब्रेक नहीं होती.
प्रकृति का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता इन दैट वे. न जल सकती, न कट सकती, न सूख सकती, न गीली हो सकती, आदि आदि. लेकिन आत्मा जैसे जैसे कर्म करती जाती है शरीर के द्वारा, तो आत्मा के अंदर शरीर का प्रभाव के कारण वो विस्मृति आती जाती है कि मैं एक आत्मा हूँ. और अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करती जाती कि मैं यही हूँ. तो ये आत्मा माना स्मृति और विस्मृति का खेल.
नहीं, पर वो करने वाली है ना.
इसीलिए वो बैटरी की जो बात कही ना, तो बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर जो आयॉन्स है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना इसको. तो फिर जब उसको चार्जर में डाल के चार्ज करते हैं, देन दे कम बैक इन ऑर्डर अगेन. तो इसलिए बैटरी के साथ भेंट किया. बाकी बैटरी और आत्मा में तो बहुत अंतर है.
बिल्कुल भाई, क्योंकि आई थिंक सोल जो है वो सत्चित है, क्योंकि वो अवेयर है.
बिल्कुल
बिल्कुल, वो चेतन है
जी.
तो दैट इज व्हाई इट इज यूनिक ना, अगर हम देखते हैं इस यूनिवर्स में.
इट इज ट्रू. सबका मतलब ये जो अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, तो इसीलिए उस हिसाब से सत्चित माना चैतन्य है. वो चैतन्य, इट इज कॉन्शियस, इट इज लिविंग, इट इज इटर्नल उस हिसाब से.
सो बिकॉज बैटरी की अगर हम बात करते हैं, पर इनका सवाल जो है वो कई लोगों का सवाल हो सकता है कि क्योंकि एनर्जी की जब बात करते हैं,
तो एक है फिजिकल एनर्जी और दूसरी है स्पिरिचुअल एनर्जी. तो स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब है जिसमें सोचने की शक्ति हो, समझने की शक्ति हो, कर्म को रिटेन करके साथ में ले जाने की शक्ति, उसको हम स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं. फिजिकल एनर्जी उस रूप से तो नहीं है ना.
बिल्कुल. आज शिरोबेन, आज की जो पूरी बातचीत रही, जिसमें हमने लोगों के सवालों के जवाब जो हैं वो लिए, और कुछ कुछ जो कन्फ्यूजन्स जो हमारी पूरी राजयोग की जो बात रही है उसमें, उससे मिलकर होती रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. कुछ कहना चाहेंगे आप चलते चलते, जो आज के पूरे आपके पास सवाल आए हैं, आपको क्या लग रहा है राजयोग को समझ पा रहे हैं लोग, और कहाँ कुछ कन्फ्यूजन्स दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह के सवाल हैं वो सामने आए.
मैं समझती हूँ कि कन्फ्यूजन यही है कि आत्मा और शरीर के बीच में जो अंतर है उसको कम समझ रहे हैं लोग. जैसे कई कहते हैं कि मेरे अंदर एक आत्मा है, कई कहेंगे मेरे शरीर में मेरी एक आत्मा है. अब ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. अगर हम कहेंगे मेरे अंदर एक आत्मा है, इसका मतलब मैं शरीर हो गई और मेरे अंदर एक आत्मा है. अगर हम कहते हैं मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर अलग है, आत्मा अलग, और मैं कोई तीसरी चीज हूँ. लेकिन वास्तव में है कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूँ. तो मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, इस शरीर से न्यारी हूँ. तो जब हम ये समझते हैं तो देह भान से डिटैच होना सहज हो जाता है. ये मैं मेरे का कन्फ्यूजन के कारण मूंज है ये
सारी। बिल्कुल, तो यहाँ एक छोटा सा ये कंफ्यूजन है जो बार बार आ जाता है, लेकिन हम जब तक बार बार इस पर बात करते रहेंगे और ये कंफ्यूजन ताकि बाहर निकल
जाए। और ये भी लास्ट में ये बताना चाहूंगी कि मुझे सदा ये स्मृति में रहे कि मैं वो शक्ति हूँ जो शरीर से पहले भी थी, मैं वो शक्ति हूँ जो शरीर के बाद भी रहेगी। शरीर तो विनाशी है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, पर मैं वो अविनाशी शक्ति हूँ जो ईश्वर के घर से आई हूँ, ईश्वर के घर जाना है।
जाना है। बहुत सुंदर आपने बात कही शिलू बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम देखते हैं तो कुछ कन्फ्यूजन जरूर थी आपके साथ भी जुड़ी हुई कि अगर मैं आत्मा हूं, अगर मैं एक एनर्जी हूं, तो क्या मैं प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हूं। लेकिन एक बात जो बिल्कुल सच सामने आई वो ये कि मैं एक शक्ति हूं, मैं एक एनर्जी हूं, लेकिन मैं अवेयर हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं एक यूनिक एनर्जी हूं, मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हूं जो जिसका मैनिफेस्टेशन बॉडी में होता है। लेकिन जैसा कि शिरो बहन ने कहा कि मैं इस बॉडी से पहले भी थी, मैं इस बॉडी के बाद भी रहूंगी। तो ये बॉडी एक पड़ाव है, अगले कई पड़ाव आएंगे, कई पड़ावों से मैं गुजर चुकी हूं। एक जो बात और जिसको लेकर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता था कि मैं क्या, इज द सोल अ परफेक्ट प्योर कंप्लीट सोल, कैन आई फील दैट? यस आई कैन फील दैट। ये बात समझ में आती है कि वो उसका सहज, उसका नॉर्मल स्वरूप, जो आत्मा का जो नॉर्मल स्वरूप है वो ये, वही सात शक्तियां हैं जो मुझ में निहित हैं, कहीं ना कहीं विस्मृति में हूं, कॉन्शियसनेस नहीं है मेरे पास, रिमेम्बरेंस नहीं है, वही याद रखना है। इस पल में शायद वो याद आ रहा है लेकिन अगले ही पल में भूल जाती हूँ, तो उस स्मृति को जितना मैं याद रखूंगी अपने साथ उतना मैं उसे फील करती रहूंगी, अनुभव करते रहेंगे। हो सकता है कोई और बात हो आपके पास, आपके सामने ही है कि आप ही के सवालों को हम देते हैं, तो आपके पास आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप हमारे साथ अपने जो सभी सवाल हैं वो शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने सवालों के जवाब आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर में जाकर भी जान सकते हैं। आप नजदीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर आगे भी चलता रहेगा। बहुत सी बातें आप ही के द्वारा भेजी गई, उन्हें शामिल करेंगे हम अपनी इस श्रृंखला में। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।